sending you the Hindi audio recording for your wire article, More Fun Than Fun, Decoding the Babbles of Crickets, Birds and Undergrads, which was published on 27th October 2021. The Hindi translation is published in the Cycle magazine in the December-January 2023 issue. सत बहनों की बोली, राघवेंद्र गदककर, चित्र भार्गव कुलकर्णी, अनुवाद शशि सबलोक. शोर मचाती सात बहनें अक्सर कहीं भी मिल जाती है, जंगलों, बगीचों, घरों के आसपास कहीं भी. ये अकेले कम दिखती है, अक्सर छह दस दस साथ चल रहती है. रहती है या रहते हैं यह पता नहीं चलता, इसलिए कहीं इन्हें सात बहनें कहते हैं, कहीं सात भाई. भारत में कम ही जगहें होंगी जहां ये नहीं मिलती है, और जहां मिलती है वहां शोर मचा कर अपने होने की खबर देती रहती है. इतनी करीब है कि हमसे पर ताज्जुब की इनके बारे में हमें बहुत सी बातें एक अंग्रेज एंटोनी गेस्टन से पता चली. सात बहनें इन ब्रैकेट जंगल बैबलर को जानने 1970 के दशक में वे ऑक्सफोर्ड से भारत आए थे. उनके बाद इस पर आगे काम नहीं हुआ. पिछले दिनों आइसर मोहाली की मंजरी जैन और उनकी दो शोधकर्ताओं सोनिया देवी एम्बेन और सोनम चोरोल ने बेबलर पर ज़बरदस्त काम किया है. जानवरों की बोली इनटू ब्रैकेट आवाज़ में मंजरी की दिलचस्पी है, तो ये शोरीली चिड़िया कैसे इनका ध्यान अपनी ओर न खींचती. उन्होंने सोचा कि इनकी तीखी ची ची जो हमें सुनाई देती है वो उत्ती ही है या कुछ और भी कह रही है. जवाब पाने मंजरी अपने साथियों के साथ काम में भिड़ गई. उन्होंने मोहाली में 9 जगहें तय की. वहाँ कई दिनों तक सात बहनों के बहुत से झुंडों की तरह हरकत पर नज़र रखी. घूमती चिचियाती चिड़ियों के आवाज़ों को रिकॉर्ड किया. घोंसले में बैठी और जाल में फंसी चिड़ियों और उनके बच्चों की चींची भी रिकॉर्ड की. इनकी टांगों पर रंगीन छल्ले पहनाए ताकि हरेक की पहचान की जा सके. वो क्या कह सुन रही थी चिचिया कर बैबलर को जो कह रही है उसे सामने वाली चिड़िया समझ क्या रही है, इसे जानने के लिए काफ़ी मशक्कत की गई. रिकॉर्ड की गई सारी आवाज़ों को बार बार सुना गया. अलग अलग आवाज़ों को पहचाना गया, उनको नाम दिया गया. आवाज़ जैसी सुनाई थी वही नाम दिया गया. ध्वनियों के मुताबिक नाम दिए जाने को ओनोमेटोपोइक कहते हैं. एंटोनी गेस्टन ने भी सात बहनों के आवाज़ों की सूची बनाई थी. मंजरी ने इसे आगे बढ़ाते हुए इसमें कई और नाम जोड़े, जैसे चक कुक क्या क्या क क क खई. हर आवाज़ के साथ वे यह भी नोट करती रही कि किस स्थिति में इसे बोला गया और उसे सुनकर सामने वाले की क्या प्रतिक्रिया रही. इस तरह 15 अलग अलग चिचियाहटों को दर्ज किया गया. इन 15 ध्वनियों में से 7 दोस्ताना और 8 गैर दोस्ताना स्थितियों में बोली गई. मंजरी और उनकी टीम ने जो पाया उसे दो उदाहरणों से समझते हैं, संपर्क करने और परेशानी में कई की गई ध्वनियाँ. अपने साथियों से संपर्क करने के लिए चक की आवाज़ की गई, खास तौर पर जब कोई अपने साथियों से बिछड़ गया था. इस आवाज़ को सुनकर कई साथी 50% वही आवाज़ करने लगे. इनमें से 41% पीछे रह गए साथी को लिवा ने उसके पास लौटाए. चक की आवाज़ ऊंची एक स्वरीय आवाज़ होती है. परेशानी में की गई आवाज़ क्या 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 तीखी एक स्वरीय पुकार होती है. परेशानी में फंसी चिड़िया इसे लगातार बोलती रहती है. आमतौर पर जाल में फंसने या इंसान द्वारा पकड़े जाने पर यह आवाज़ की जाती है, शायद साथियों का ध्यान अपनी ओर लाने के लिए. टीम ने करीबन 30% साथियों को इस पर प्रतिक्रिया देते देखा. किस्म किस्म की बोलियाँ. जंगल बैबलर की यह 15 तरह की बोलियाँ हमें एक दूसरे से एकदम अलग सुनाई देती है. साथी चिड़ियाँ इनसे अलग अलग अर्थ पाती दिखी, पर विज्ञान में शोध किन्हीं लोगों के अनुभव के आधार पर नहीं हो सकता. किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए आवाज़ों को ठोस अंकों में तब्दील करना ज़रूरी है. आवाज़ हवा के कंपन से पैदा होती है, इसलिए सभी 15 आवाज़ों का स्पेक्ट्रोग्राम द्वारा मापन किया गया। स्वरों के बीच की दूरी के हिसाब से आवाज़ों को एक स्वरीय, बहुस्वरीय मतलब एक बार में एक से ज़्यादा स्वर, या कोरस मतलब एक से ज़्यादा पक्षियों का एक साथ आवाज़ें करना कहा गया। जंगल बैबलर के बहुस्वरीय आवाज़ के स्पेक्ट्रोग्राम थे, 1 खतरा हो सकता है, 2 खतरा है सावधान, 3 तैयार रहो, 4 तुरंत उड़ जाओ। पहली दो आवाज़ें तब की गई जब कोई चुनौती दी जा रही हो, जबकि दूसरी दो आवाज़ें बचाव के लिए की जाती पाई गई। स्पेक्ट्रोग्राम से कई तरह के आंकड़े निकल आए, जैसे किस तरह के आवाज़ करते हुए कहां कहां कितनी ऊर्जा लगी, आवाज़ों की लंबाई कितनी थी, आवाज़ें कितनी स्वरीय थी वगैरह वगैरह। पाया गया कि दोस्ताना आवाज़ों की संरचना लगभग एक सी थी और गैर दोस्ताना आवाज़ों की संरचना मिलती जुलती थी, यानी मिलते जुलते अर्थ वाली आवाज़ों की संरचना में समानता देखी गई। मंजरी की टीम ने अपने नतीजे एक लेख में लिखे, बेकार की बड़बड़ से कहीं ज़्यादा कहती है बैबलर। टीम का कहना सही भी है। अपने आसपास इस आसानी से मिलने वाली चिड़िया पर शोध कर रही इस टीम ने बैबलर के चिचियाने में किसी इंसानी भाषा की सी बारीकियां खोज निकाली हैं। मैं चाहूँगा कि कोई और आए जो इन नतीजों की नींव पर अपने अलग अध्ययन की इमारत खड़ी करे, और यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि जीवों के व्यवहार को जानने के लिए कोई दुर्लभ पहुंच के बाहर या इकोलॉजिकली नाजुक जीव का ही चुनाव किया जाए, बल्कि बात तो तब है जब आम से आसानी से दिखाई दे जाने वाले जीवों पर कोई खास शोध हो। आफ्टर दैट इन ब्रैकेट एट द एंड, यह लेख का संपादित रूप है। पूरा लेख द वायर में पढ़ा जा सकता है, डिकोडिंग द बैबल्स ऑफ बैबलर्स क्रिकेट्स एंड अंडरग्रेड्स। द आर्टिकल finishes here.